الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلے جمعے کے بیان میں بھی قدرتاً سورہ جن ہی کی بات شروع ہوئی تھی تو اس دفعہ بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک بات کرنے کا ارادہ ہے. تعلق تو ہے اس کا آج کل کی جو سب سے بڑی خبر پوری دنیا کے اندر بنی ہوئی ہے, کرونا وائرس, اس سے تعلق ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کے علم میں آیا ہے یا نہیں, لیکن اس آجز کو تو کسی نے بھیج دیا تھا یہ میسج, تو اس وجہ سے مجھے پتہ لگ گیا. آپ لوگوں کو بھی شاید پتہ ہوگا کہ یہ جو کرونا وائرس آؤٹ بریک ہوئی ہے تو کسی امریکن لیڈی نے, سائیکک کہتے ہیں ان کو ہمارے یہاں, جن کو نجومی کہتے ہیں, تو اس نے 2008 میں ایک کتاب لکھی تھی اینڈ آف ٹائمز کے نام سے. اس میں اس نے ایک پیراگراف کے اندر اگزیکٹلی سال کے مینشن کے ساتھ کہ سال 2020 میں دنیا میں ایک نمونیا ٹائپ کا آؤٹ بریک ہوگا اور اس میں یہ سمٹمز ہوں گے جو کہ اگزیکٹلی کرونا وائرس کے اوپر بیٹھتے ہیں, اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکے گا. اور یہ بھی کہا ہے کہ جتنی تیزی سے وہ چیز پھیلے گی پوری دنیا میں اتنی تیزی سے وہ ختم بھی ہو جائے گی. تو لوگوں نے اس کو نکالا کہ بھئی پوری آپ کے اخباروں میں آ چکی ہے, پوری دنیا میں یعنی انٹرنیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اس خبر سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر ہے اسی سے متعلق, وہ یہ کہ یہ تو 12 سال پہلے لکھی تھی اس عورت نے, ایک اور صاحب نے آج سے 40 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی 40 ایئرز پہلے, اور اس کے اندر اس نے ووہان وائرس کے نام سے ایک وائرس کے ذکر کیا تھا کہ ووہان کا جو شہر ہے یا صوبہ جو ہے چائنا میں, تو اس کے باہر یہ وائرس جو ہے وہ بنایا جائے گا لیبس کے اندر, اور پھر وہ اس طریقے سے اس کا آؤٹ بریک ہوگا وغیرہ. تو یہ تو بالکل لیٹسٹ خبریں ہیں اس وائرس آؤٹ بریک کے بارے میں, لیکن جن لوگوں نے اور بھی سنی ہے اس طرح کی خبریں تو وہ اور بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے چند سالوں پہلے سے ہی ایک اور فینومنا بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے لوگوں میں, جس کو کہ سمپسنز کارٹون کا فینومنا کہتے ہیں. تو سمپسنز کارٹون ہے, اس کا سلسلہ کیا ہے کہ وہ تقریباً 28 سال یا نہ جانے اتنی زیادہ نمبر آف ایئرز سے وہ چل رہا ہے, مستقل اس کی ایپیسوڈز آ رہی ہیں, اور اس کے اندر وہ بہت ہی پولیٹیکل قسم کا کارٹون ہے. وہ بچوں کا کارٹون نہیں ہے, وہ ایک طرح سے بڑوں کا کارٹون ہے, کیونکہ اس کے اندر بڑی سنجیدہ قسم کی باتیں دکھائی جاتی ہیں, اور پالیٹکس کے بارے میں اور ورلڈ افیئرز کے بارے میں, اور دنیا میں جو وارز ہو رہی ہیں یا بہت ساری جو اس قسم کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں. اور وہ اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ یہ نہیں کہ جو ہو چکے ہوتے ہیں ان کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے, بلکہ بس وہ کوئی چیز دکھا دیتے ہیں. سیریا کے اندر فار ایگزامپل وار, اس کے بارے میں انہوں نے دکھا دیا کوئی چیز. ایبولا وائرس ایک آؤٹ بریک ہوا تھا آج سے 18 سال پہلے شاید, تو اس کا ذکر تھا اس کے اندر. इस तरह की अच्छा ये सब चीजें जो है वो उन्होंने पहले दिखाई थी और दुनिया में ये मामला जो है वो बाद में हुआ था। तो इनमें से चंद चीजों के बारे में तो आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि दुनिया में जो ये हरकतें करने वाले लोग हैं ना, ये लोग जो है ना पहले से उन्होंने प्लानिंग करी हुई होती है और उस प्लानिंग को फिर उन्होंने किसी तरीके से डॉक्यूमेंट कर दिया होता है और फिर उसको दिखाते हैं, फिर उसको दुनिया के अंदर फिर फैलाते हैं। या ये कि इस तरह की जो प्रोग्राम्स होते हैं या बुक्स होती हैं उनके अंदर इन चीजों को पहले मेंशन करते हैं और जो बुक के अंदर पहले से मेंशन किया हुआ होता है फिर उसी तारीख के ऊपर जाकर के वो वाला अमल करते हैं, जो भी उसकी रीजंस होती हैं। लेकिन ये जो प्रेडिक्शंस या प्रोफेसीज का जो सिलसिला चल रहा है ये इतना मुख्तसर नहीं है, ये इतना कम चीजें नहीं है कि जिनके ऊपर आप इस एक्सप्लेनेशन को लागू कर सकें, ये इससे बहुत ज्यादा तवील जाता है और ऐसी ऐसी एक्यूरेट चीजें होती हैं कि जिनको कि कोई ह्यूमन पावर कंट्रोल कर नहीं सकती। यानी एग्जैक्टली के जैसे कि एक बंदा इधर खड़ा हुआ है एक बंदा इधर खड़ा हुआ है तो उस कार्टून के अंदर एग्जैक्टली वही शक्ल का वही बंदा वैसे ही इधर खड़ा हुआ है और वैसे ही दूसरा बंदा इधर खड़ा हुआ है, वो उतर रहा है तो वो वैसे ही उतर रहा है जैसे कि कार्टून के अंदर दिखाया गया था। अब इतना ज्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां पे कोई लोग भी नहीं खड़े हुए होते कि जिसको तुम इधर खड़े हो जाओ तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो, इस तरह से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता। वो तो वीडियो बन रही है, वो वीडियो में कैप्चर हो जाता है, फिर बाद में लोग देखते हैं अच्छा अच्छा इस तरीके से हुआ था जिस तरह से उस कार्टून के अंदर बताया गया था या जिस तरह से उस हॉलीवुड की फिल्म। अच्छा सिर्फ कार्टून नहीं है, सिर्फ ये एक कार्टून नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी चीजें, मूवीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, बुक्स हैं, तो इन सब के अंदर इस तरह की प्रोफेसीज जो हैं वो मिलती हैं। तो अब ये जो फिनोमिना है ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसका किसी के पास आंसर है कैसे होता है ये? क्या इन लोगों के पास गैर का इल्म है, फ्यूचर का इल्म है, या ये कि ये कोई खुदाई ताकतें हैं कि जिनका खुदा के साथ एक ऐसा ताल्लुक हो गया है कि खुदा जो है वो इनको फ्यूचर के बारे में बताता रहता है? तो ये है क्या, इसकी हकीकत क्या है? इसका जब मेरे सामने पहली दफा ये चीज आई थी तो इसका एक जवाब मौजूद तो था लेकिन वो इतना कॉम्प्रहेंसिव जवाब नहीं था जहन के अंदर। तो जब हमने पूछना शुरू किया, इधर उधर देखना शुरू किया तो हमें वो जवाब इस तरीके से मिला नहीं कि जो कि किसी को सेटिस्फाई कर सके, उसको क्लियरली समझा सके कि हाँ ये चीज जो है वो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ये चीज वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, हमें ये बात पहले से पता है और ये चीज बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब है हमारे टेक्स्ट के अंदर, हमारे अकाबरीन ने इसके ऊपर पहले से बात करी हुई है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से ना ये क्लियर एक्सप्लेनेशन इस फिनोमिना की, फ्यूचर प्रिडिक्शन के जो फिनोमिना है, प्रोफेसीज का जो फिनोमिना है, इसकी कोई ऐसी क्लियर एक्सप्लेनेशन जो है वो मौजूद नहीं थी या शायद अभी भी मौजूद नहीं है। वो तो हमने क्लासेस के अंदर बहुत ज्यादा लोगों के साथ इसके ऊपर बात करी तो हमें लगता है कि जैसे मौजूद है, लेकिन आई एम श्योर कि जो हाल मेरा था आज से 2 साल पहले इसके बारे में कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, तो अगर इस आजिज का जो कि तफसीर इतने अरसे से पढ़ा रहा है, आलिम कोर्स भी किया हुआ है और मशाइख के साथ भी ताल्लुक है और ये भी है, वो भी अगर इस बात बारे में एकदम से क्लियर नहीं था तो फिर जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका इल्म से भी कोई ताल्लुक नहीं, बुजुर्गों के से भी कोई ताल्लुक नहीं और जिन्होंने कोई कुरान की भी इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं करी है, तो वो इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ऐसे जो लोग होते हैं ना फिर उनके जहन में फिर डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, शकूक क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, अजीब अजीब एक्सप्लेनेशन जिसकी आती हैं या ये कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आती है, और फिर वो पूरे के पूरे जो दीनी ट्रेडिशन होता है उसको फिर शक की निगाह से देखना शुरू हो जाते हैं। अगर मुकम्मल तौर पर वो डिनाय नहीं भी करते फिर भी उनके यकीन में, उनके ईमान में एक डेंट पड़ जाता है और शैतान एक्चुअली इसी तरीके से काम करता है। शैतान जो है ना वो एकदम से तबाह नहीं करता, एकदम से जैसे गाड़ी तबाह हो जाए किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट के अंदर, इस तरह से उमूमी तौर पर शैतान का तरीका नहीं होता। शैतान छोटे छोटे डेंट्स डालता है, छोटे छोटे डेंट्स डालता है और डालते 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 अल्टीमेटली जो है वो बंदे के पूरी गाड़ी तबाह हो जाती है। तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है। तो इस तरह के जो वाकयात होते हैं इनके जरिए से ईमान के अंदर डेंट्स पड़ते हैं। तो इनका कोई हल करने की जरूरत है, इनको हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे इनको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे या तो अपने ईमान में कुछ ना कुछ डेंट पड़ चुका होता है इन बातों को सुनने से, या अगर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है इन चीजों के बारे में सोचे, हम इतना बिजी हैं अपने अपने धंधे के अंदर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे भी इतना बिजी हैं और हमारे बच्चों के पास भी इन चीजों को डिस्कस करने का कोई टाइम नहीं है, कोई ऐसा है नहीं जो कि उनसे इस तरह की बातें डिस्कस करता है। हमारे पास तो टाइम ही होता ना, हम तो सुबह गधे की तरीके से दफ्तर में लगते हैं, जुटते हैं अपने काम के अंदर और फिर वहीं से जो है उसी तरीके से वापस आते हैं, फिर घर के अंदर दोबारा जुट जाते हैं एक गधे गाड़ी के अंदर और फिर बिलाखिर जो है वो थक हार करके सो जाते हैं, सुबह उठ करके फिर गधे गाड़ी के अंदर जुट जाते हैं। बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं होता ना, बच्चे तो जब स्कूल जाते हैं तो उनकी जो पढ़ाई वढ़ाई का काम होता है उसके अलावा भी उनके पास इतना टाइम होता है कि जिसके अंदर के उनके साथ के जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उनके साथ चीजें शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, जो उन्होंने सुनी होती हैं, पढ़ी होती हैं, इंटरनेट के ऊपर देखी होती हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो उनके पास तो बहुत टाइम होता है इन चीजों को सोचने का फिर, और जब वो इन चीजों को सोचते हैं तो फिर उनके ऊपर असर होता है इन बातों का, फिर उनका फिर ईमान उस तरह से नहीं रहता जिस तरह से आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का ईमान हो। तो इस वजह से इसका सद्भाव करने की जरूरत है, इसको ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से फिर इसके ऊपर जरा ज्यादा तहकीक करी, अल्लाह ताला से मांगा, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, मेहरबानी फरमाई कि बात बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ही दलाइल भी दे दिए, नकली दलाइल भी दे दिए। पहले तो अकली दलाइल जहन में आए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा, ऐसा होता होगा, नकली दलाइल मिल नहीं रहे थे। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं तो नकली दलाइल भी मिल जाते हैं, यानी कोई हदीस भी मिल जाती है, कोई टेक्स्ट भी मिल जाता है जिसके अंदर ये बात लिखी हुई हो। तो फिर उसको एक्सप्लेन इस तरीके से किया, और आप में से अक्सर जो है क्लासेस के अंदर सुन भी चुके होंगे इनको, तो जो नहीं सुने हैं वो पहली दफा सुनेंगे और जो सुन चुके हैं वो रिमाइंडर की ऐसी उसे सुन लें कि जब नबी अलैहि सलाम की बेइज्जत हुई थी तो उससे पहले शयातीन का यह सिलसिला था कि ये आसमानों में जाते थे और वहां पर फरिश्तों की बातों को सुनते थे। फरिश्तों का क्या काम होता है? फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसानों की तरह पैदा नहीं किया, जिन्नों की तरह पैदा नहीं किया, ये बिल्कुल एक अलग मखलूक हैं। इनकी उस तरह की लाइव्स नहीं है जिस तरह से कि जिन्नों की लाइव्स होती हैं। मियां बीवी होते हैं, शौहर बीवी, बच्चे होते हैं, जिन्नों के अंदर भी यही सिलसिला है पूरा का पूरा, उसी तरीके से इंसानों के अंदर भी ये पूरा एक घरेलू जिंदगी वाला सिलसिला है। फरिश्तों के यहां तो ये वाला सिलसिला है नहीं। तो फरिश्तों को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है? फरिश्तों को अल्लाह ताला ने सिर्फ एज ए वर्कर पैदा किया है, काम करने के लिए पैदा किया है। और हर एक ग्रुप ऑफ एंजल्स को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई काम लगाया हुआ है जिम्मे। किसी का काम जो है वो सिर्फ बैठे रहना है और तस्बीह करते रहना है, कादे की शक्ल में बैठे रहते हैं। किसी का काम है कि खड़े रह करके अल्लाह ताला की हम तो सना बयान करते रहें। किसी का काम है कि रुकू के हालत में पड़े रहें और हमेशा वो रुकू की हालत में रहते हैं। जब से बनाया है उस वक्त से लेकर के पता नहीं कब तक, जब तक अल्लाह ताला चाहेगा वो रुकू की हालत में रहेंगे, वो कुछ और काम नहीं करेंगे। कुछ का काम है सजदे की हालत में रहना, वो कुछ और काम नहीं करते, सिर्फ सजदे की हालत में रहते हैं, वगैरह वगैरह। और बाकी फरिश्ते जो होते हैं उनके क्या क्या काम है? उनके काम है कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया के अंदर मुआमलात करने होते हैं, जो अंजाम देने होते हैं, अफेयर्स, काम काज करवाने होते हैं, वो अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से करवाते हैं। फरिश्तों को टास्क असाइन होता है, और जब टास्क असाइन होता है तो उसका भी कुरान के अंदर जिक्र है कि जब अल्लाह ताला की आवाज आती है आसमानों में तो फरिश्ते उस आवाज को सुनते हैं, और उस आवाज को सुन करके इनके ऊपर एक हैबत तारी हो जाती है, फजा तारी हो जाता है, ये मदहोश हो जाते हैं और फिर ये बेहोश हो जाते हैं। अपने रब की आवाज सुन करके ये झूमना शुरू हो जाते हैं और ये बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद ये होश में आते हैं। ये सारा का सारा टाइम गुजर रहा होता है, ये एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर टाइम गुजर रहा है और वो एक अलग टाइम गुजर रहा है। हमारा टाइम नहीं गुजर रहा होता, वो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम गुजर रहा होता है। जिस तरीके से एक नबी अलैहि सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो कितना कुछ किया, वहां पर बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए, वहां से फिर आसमानों पे गए, फिर एक एक आसमान के ऊपर सारे वाकयात पेश आए, फिर उसके बाद जन्नत की सैर के बाद अर्श के ऊपर गए, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, वापस आए, मूसा अलैहि सलाम से बातें चल रही है, नमाज असाइन हो रही है, जन्नत दिखाई जा रही है, जहन्नम दिखाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। जमीन पर टाइम पास ही नहीं हो रहा, गुजर ही नहीं रहा है। जमीन का पूरा सिस्टम रुका हुआ है, जहां पर था वहीं पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर वापस आते हैं, बिस्तर को जैसा छोड़ करके गए थे जैसे गर्मी होती है इंसान की बॉडी की, वो गर्मी अभी तक मौजूद थी क्योंकि टाइम पास ही नहीं हुआ था। असल में सारा का सारा निजाम अल्लाह ताला ने रोक दिया था, लेकिन वहां पे निजाम सारा का सारा चल रहा था और इतना सारा कुछ हो चुका था वहां पर। तो फरिश्तों के यहां इतना कुछ हो रहा होता है कि वो बेहोश हो जाते हैं, फिर उसके बाद होश में आते हैं, फिर वो एक दूसरे से दरियाफ्त करते हैं कि हमारे रब ने क्या क्या हुक्म दिया था हमें। तो फिर एक दूसरे के दरमियान फिर उनका मुजाकरा होता है कि भाई ये हुक्म दिया था हमारे परवरदिगार ने, ये कहा था करने को। उसके बाद फिर वो लोग तदब्बुर करते हैं, तदबीर करते हैं कि अच्छा ये जो हमें हुक्म मिला है, ये टास्क साइन हुआ है, इस टास्क को हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है जाकर के। तो एग्जीक्यूशन की पूरी तदबीर करते हैं, तदबीर करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद वो फिर दुनिया में उतरते हैं, आलम दुनिया के अंदर आते हैं जिसको आलमुल खल्क कहा जाता है, और यहां पर आकर उस टास्क को फिर एग्जीक्यूट करते हैं, उसको अंजाम देते हैं। तो ये सिलसिला आसमानों के अंदर और जमीन के अंदर हमेशा से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा जब तक ये जमीन है उस वक्त तक। तो शयातीन जो है ये आसमानों में चले जाते थे और वहां पर जाकर के ये सरगोशी किया करते थे, क्योंकि शयातीन को अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी दी है कि ये फरिश्तों को देख सकते हैं। आलमुल अमर की जो चीज है ना, रूहानी दुनिया की चीजें, उनको हम नहीं देख सकते लेकिन शयातीन देख सकते हैं, सुन सकते हैं उनकी आवाजों को, उनकी बातों को। तो इस तरीके से ये सरगोशी करके उनकी बातों को सुना करते थे और फिर ये जमीन पर आकर के जिन इंसानों ने इनके साथ गठजोड़ किया हुआ था बहुत ही ज्यादा शिर्क और कुफर और फिस्क फुजूर में मुब्तला इंसान जो कि जादूगर होते हैं, काहिन जिनको कहा जाता है, तो ये लोग इनके साथ एक एग्रीमेंट बना करके रखते हैं कि भाई हम तुम्हें जो है वो फलानी चीज प्रोवाइड करेंगे इन रिटर्न ऑफ दीज न्यूज। ये खबरें जो तुम फरिश्तों से उचक कर लेकर के आओगे ना, वो तुम हमें दोगे, इसके बदले में हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई फेवर करेंगे या हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ ना कुछ काम किया करेंगे। तो ये इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट होता है। तो ये शयातीन आकर के इन काहिनों को फिर कुछ खबरें बताते हैं जो उन्होंने फरिश्तों से सुनी होती हैं, लेकिन उन खबरों के अंदर सच जो होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है और बहुत ज्यादा अपनी तरफ से झूठ मिलाते हैं जो कि उन्होंने नहीं सुना होता ऊपर। वो क्यों झूठ मिलाते हैं? इसलिए क्योंकि काहिनों के साथ, जादूगरों के साथ इनकी दोस्ती जो होती है वो सिर्फ एक मतलब परस्ती वाली दोस्ती होती है, वो सिर्फ एक मकसद निकालने के लिए, अपना काम चलाने के लिए दोस्ती होती है, हमदर्दी वाली दोस्ती नहीं होती, ये मुआलात वाली दोस्ती नहीं होती, मोहब्बत वाली दोस्ती नहीं होती। इसलिए कि शयातीन जो है, फासिक फाजिर शयातीन, ये इंसानों के कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, इंसानों के हमदर्द नहीं हो सकते। ये इनका तो इंसानों के साथ बुग़्ज़ है, इनाद है, इनको तो हसद है इंसानों के साथ। इनके बड़े ने इंसानों को बर्बाद करने की कसमें खाई अल्लाह ताला से। तो उसके जो फॉलोअर शयातीन है, फासिक और फाजिर या काफिर शयातीन, ये इंसानों के हमदर्द कैसे हो सकते हैं? ये कभी भी हमदर्द नहीं हो सकते। इस वजह से ये थोड़ी सी खबर देते हैं ताकि काम चलता रहे, दुकान चलती रहे, और ज्यादा जो है वो झूठ मिलाते हैं ताकि इनका असल फायदा ना हो जाए, कोई किसी किस्म का इनको बेनिफिट ना हो जाए अगर पूरा सच बता देंगे। तो इस तरीके से वो खबरें दिया करते थे। जब नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई तो उस वक्त क्या सिलसिला हुआ कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, कि खास बटालियन ऑफ एंजल्स, उनको हुक्म दिया कि भाई तुम लोग जो है ना आसमान के ऐसे ऐसे चेक पोस्टों के ऊपर बैठ जाओ कि जब तुम किसी शैतान को आते हुए देखो तो उसको शिहाबर रसदा से तुम मारो और उसको यहां पर आकर के कोई खबरें उचकने ना दो। तो अब सूरह जिन के अंदर इसकी पूरी तफसील बयान हुई है जिसमें अल्लाह ताला ने इसको नकल किया कि ये लोग जो जिन आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अन्ना लमसन समा आ, कि हम ऊपर गए ना तो हमने आसमान को पूरा टटोल करके देखा, यानी जगह जगह चप्पे चप्पे में हमने जाकर के देखा। फवजत ना, हमने वहां पर पाया, मुलियत हरसन शदीदा, एक बहुत ही सख्त पहरा, वशुहबा, और उस आसमान को हमने, यानी इन जो तो पहरा पाया ना वहां पर फरिश्तों का पहरा, उनके पास हमने बहुत ही शोले पाए जिससे कि वो हमें मारते थे। वह अन्ना कुन्ना नकद मिन्हा मकाद अल सम, और बेशक हम आसमान के मौके में, यानी आसमान की इन जगहों के ऊपर बातें सुनने के लिए बैठा करते थे। फमई यस्तम अल आना, तो जो शख्स अब सुनना चाहे, अल आन, अब जो सुनने की कोशिश करता है, यजिद लहू, तो वो पाता है अपने लिए एक शिहाबर रसदा, एक शोला तैयार पाता है, यानी जिस पिछली जुमे कोई बात हुई थी कि एक बैलिस्टिक मिसाइल टाइप की चीज पाता है जो कि उसको वो फरिश्ते मारते हैं, तो ये सिलसिला बंद हो गया। तो जब हमने ये सुना ना कि सिम्पसन्स कार्टून के अंदर उन्होंने इतनी सारी प्रेडिक्शन जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू हुई हैं, 15 कोई कहता है, 20 कोई कहता है, 21-22, तो वो जो एग्जैक्टली ट्रू हुई हैं तो वो कैसे ट्रू हो गई जबकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ऊपर पहरा लगा दिया और वो अब खबरें नहीं लेकर के आ सकते, तो फिर उनको फ्यूचर की खबरें कैसे पता चल गई? तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो आसमान है ना जिनके अंदर फरिश्तों की एंट्री को बैन किया गया है, ये आसमान तो फरिश्तों के ऑफिसेज हैं, ये इनकी वो जगह है जहां पर बैठ करके ये प्लानिंग करते हैं, इनको एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मिलता है चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से ऑर्डर मिलता है और फिर उसकी ये प्लानिंग करते हैं, चार्ट बनाते हैं, जो भी हमारे दफ्तरों के अंदर इस तरीके से इंजीनियर लोग माशाल्लाह प्लानिंग किया करते हैं। तो जब प्लानिंग वगैरह सारी हो जाती है तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट उन्होंने किधर करना होता है? एग्जीक्यूट उन्होंने आसमानों में तो नहीं करना होता, राइट? जिस तरह से इंजीनियर साहब जो होते हैं वो दफ्तर में बैठ करके अपने इंजीनियरिंग को थोड़ी कर रहे होते हैं, वहां तो प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दफ्तर से निकलते हैं और साइट एरिया पे जाते हैं जहां पे जाकर के फिर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना होता है, इलेक्ट्रिकल का हो कि सिविल का हो कि मैकेनिकल का हो कि जो भी हो प्रोजेक्ट, वो तो उन्होंने साइट एरिया पे जाके बनाना होता है। तो साइट एरिया फरिश्तों का क्या है, एग्जीक्यूशन प्लेस क्या है? वो तो दुनिया है, वो आसमान तो नहीं है। तो जब वो दुनिया में आते हैं ना तो दुनिया में तो ये शहाबुल रसदा का सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला तो आसमानों में है। तो जब ये दुनिया में आ जाते हैं एग्जीक्यूशन पेस के ऊपर आ जाते हैं ना, तो अब यहां पर भी शयातीन कोशिश करते हैं कि इनसे कुछ ना कुछ खबरें उचक लें, ठीक है? लेकिन यहां पर ज्यादा उचक नहीं पाते, क्यों? इसलिए कि जो कंप्लीट प्रोजेक्ट प्लान होता है वो तो होता है ऑफिस के अंदर, साइट एरिया के ऊपर कंप्लीट प्रोजेक्ट प्लान नहीं होता। वहां पर तो सिर्फ जितना पोर्शन वहां पर इंप्लीमेंट करने का अभी मौका होता है सिर्फ उतनी तस्वीर लेकर के आई जाती है, बहुत ही मिनिमल जिसकी जरूरत होती है, तो साइट एरिया के ऊपर सिर्फ उतनी चीज लेकर आई जाती है, बाकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो तो ऑफिस के अंदर रखी जाती हैं और जैसे जैसे जरूरत पेश आती है तो ऑफिस वापस जाते हैं और वहां से मजीद लेकर के आते हैं। तो अब जो दुनिया के अंदर वो डिटेल्स लेकर के आते हैं ना फरिश्ते, ये डिटेल्स जो है वो बहुत कम होती हैं। तो अब जो शयातीन उनसे उचकते हैं चीजें, ये और भी ज्यादा कम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि इनके हाथ में आ जाती है। अच्छा, इसके ऊपर क्या दलील कि ये दुनिया के अंदर भी उचकने के ऊपर कुदरत रखते हैं या उचकने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर क्या दलील है? इसके ऊपर अजीब दलील सूरह मुद्दसर की आयत से अभी मिली है। अभी चंद दिन पहले जो खवातीन के अंदर तफसीर की क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो उसके अंदर सूरह मुद्दसर अभी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या जिक्र है, आयत मेरे अभी जहन में नहीं है, कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वही के साथ नबी अलैहिस्सलाम के पास भेजते थे, तो हम तो यही समझते हैं ना कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अकेले लेकर के आ जाते थे वही और नबी अलैहिस्सलाम को ट्रांसफर कर दिया करते थे किसी भी मैकेनिज्म के जरिए से, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वही लेकर के आते हैं तो उनके साथ अल्लाह ताला ने 4 बॉडीगार्ड्स भेजे होते हैं, 4 बॉडीगार्ड फरिश्ते, जिनका काम क्या होता है, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरीके से सर्कल किए हुए होते हैं कि कोई शैतान जो है उस वही के अंदर रखना अंदाजी ना कर सके। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोई कमजोर चीज है कि कोई शैतान आकर के उनको मार करके वही चोरी करके ले जाएगा? नहीं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वो कुछ नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है किसी शैतान के अंदर, लेकिन उचकने की कोशिश जो है वो अभी भी कर रहे होते हैं, दुनिया के अंदर वो कर रहे होते हैं। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस आलम में दुनिया के अंदर उतरे हुए होते हैं तो उस उचकने से उस वही को बचाने के लिए, क्योंकि वही के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वही एब्सोल्यूटली सिक्योर होनी चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर जो है वो कमी बेशी नहीं हो सकती, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो वही के लिए अल्लाह ताला 4 फरिश्ते भेजते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो बाकी काम होते हैं उनका तो कहीं नहीं है कि जी 4 फरिश्ते प्रोटेक्शन के लिए आते हैं उसकी, तो बाकी जो चीजें होती हैं वो तो अनप्रोटेक्टेड होती हैं। तो शयातीन का तो सिलसिला चल रहा है कि वो उसमें से फिर भी उचकने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी कोशिश करते रहते हैं, तो कुछ ना उनके हाथ में आ ही जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है। अब उस कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को वो अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं और फिर उनके दोस्त जो हैं वो फिर एंड ऑफ टाइम्स की किताब लिखते हैं, फिर वो जो है वो वुहान फॉर 40 वायरस के बारे में लिखते हैं अपनी किसी नॉवेल के अंदर, फिर वो जो है वो सिम्पसन्स का कार्टून बनाते हैं, और फिर जो है वो हॉलीवुड के दूसरे प्रोग्राम्स बनाते हैं। ये सारे उनके दोस्त हैं, उनके जिगरी यार हैं, सो कॉल्ड जिगरी यार, असल में तो कोई सारे के सारे एक साथ ही जाएंगे जहन्नुम में। तो मदद तो कोई किसी की नहीं करता, लेकिन कारोबार चलाने के लिए दोस्तियां तो बनाई हुई हैं अपनी। तो फिर सिम्पसन्स का जो कार्टून है वो 28 साल 30 साल तक चलता रहता है, हर हफ्ते उसका शायद एपिसोड आता है, और हर एपिसोड के अंदर वो बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। तो अगर उन सारी बातों को आप ज्वाइन करें, कंबाइन करें, तो वो हजारों की तादाद में पहुंचेंगी वो सारी बातें जो उन्होंने सिम्पसन्स में दिखाई हुई हैं। लेकिन उसमें से ट्रू कितनी हुई हैं? 15। तो अगर आप उसका तनासुब बनाएं तो आई एम श्योर कि अगर आप पेपर पेंसिल लेकर के उसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो वो 100 में से एक सच, इतना ही तनासुब निकलेगा जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया हुआ था। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लम से पूछा कि ये काहिन जो बतौर पेशिन गोई कुछ बता देते हैं, इसकी क्या हकीकत है? मिश्कात मसाबी की हदीस है। तो आप सल्लम ने फरमाया कि ये लोग कुछ भी नहीं है, यानी इनकी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनसे ज्यादा मरूब होने की कोई जरूरत नहीं है। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लम, कभी ऐसा होता है कि काहिन जो बात बयान करता है वो ठीक निकल आती है? जैसे कि इनकी निकल रही है सारी बातें ठीक, सारी तो खैर नहीं, कुछ बातें ठीक निकल रही हैं। तो आप सल्लम ने फरमाया कि वो एक सही बात वो हो जाती है जिसे जिन उचक लेता है, क्योंकि फरिश्ते झूठ नहीं बोलते ना, जो फरिश्तों से उचकी भी बात होती है वो तो ठीक होती है। तो जिसे जिन उचक लेता है और अपने दोस्त के कान में डाल देता है जैसे मुर्गी करकर करती है, फिर वो यानी काहिन या वो जिन खुदी वो इसमें 100 से ज्यादा झूठ मिला देते हैं, यानी 99% एटलीस्ट उसमें झूठ होता है और 1% उसके अंदर ट्रूथ होता है, और उसी को फिर बाद में जब वो मामला दुनिया के अंदर हो जाता है तो फिर दोस्तों को तो पता होता है कि हमने क्या किया हुआ है, तो फिर उसको वो वायरल कर देते हैं उसके बाद, और वायरल करने का असर जो है फिर हम जैसे लोगों के ऊपर बड़ा ज्यादा होता है कि ये कैसे हो गया भाई, ओहो इनके पास तो बड़ी ताकतें हैं, ये तो बड़े ताकत वाले हैं, कुव्वत वाले हैं, और ऐसे हैं और वैसे हैं, ठीक है, और हम परेशान हो जाते हैं। और जो हमारे बच्चे होते हैं जिनको इतना भी नहीं पता होता कुछ, तो वो फिर इनसे मरऊब भी हो जाते हैं, इनसे इम्प्रेस भी हो जाते हैं, और इस तरीके से इंसानों का ईमान खत्म होना शुरू हो जाता है, डेंस पड़ने शुरू हो जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह भी बयान फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी सुना कि फरिश्ते बादलों में उतरते हैं, वो आपस में उन फैसलों का तज़किरा करते हैं, यानी आलमुल अमर जो कि आसमान है वो इनके दफ्तर है, वो वहां से उतरते हैं आलम दुनिया के अंदर जहां पे बादल वगैरह आसमान के अंदर होते हैं, ये सब हमारी दुनिया की चीजें, तो वहां पर आकर के भी वो तज़किरा करते हैं, यानी जो अकली दलील पहले बयान करी थी ना अकली तौर पर, अब उसकी नकली दलील है, ठीक है, कि इस दुनिया में भी आकर के साइट एरिया में भी वो अपने बातों का अपने कामों का तज़किरा करते हैं। तो शयातीन कान लगाकर चुराने की कोशिश करते हैं और जो बात सुनते हैं उसे काहिनों के कानों में डालकर जाकर डाल देते हैं और काहिन उसमें अपने पास से 100 झूठ मिला देते हैं। तो यह हदीस भी मिश्कातुल मसाबीह की 393 हदीस है और बुखारी शरीफ से इसको नकल किया गया है, और पिछली जो हदीस थी वो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों से मनकूल है, और मिश्कातुल मसाबीह की का रेफरेंस यहां पर दिया हुआ है। तो ये जो मामला है ना, ये आपके सामने हम इस वजह से भी बयान कर रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि आज का फिनोमेना कि कोरोना वायरस के बारे में ये चीजें हैं तो इनसे आप परेशान ना हो या और अपने बच्चों को आप बातें समझा दें, बल्कि इसका मकसद जो है वो इससे भी ज्यादा बहुत गहरा मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद ये है कि देखें, इंसान जो होते हैं ना, इनका एक एतमाद का रिश्ता अगर हो जाए ना किसी जगह पर किसी एक के साथ भी, तो ये एतमाद का रिश्ता जो होता है ना, ये उनके लिए डिसिसिव होता है, फैसला कुन होता है ये, जिसके ऊपर भी उनका एतमाद का रिश्ता बन जाए। अब इससे फिर गर्ज नहीं होती कि वो बंदा क्या बात कर रहा है, वो बंदा बस जो कह दे ना, अगर आपका उसके ऊपर एतमाद है, यू वेरी एक्टिवली बाय इट, अब बहुत आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने एक कॉन्फ्रेंस कुछ एक कोई इवेंट हुआ था जिसमें हमारे मुल्क के एक बड़े साहब जो है ना, पुराने बड़े, तो वो कुछ बात उन्होंने करी थी, तो ऑडियंस में से ना एक बहुत बड़े और काफी मुस्तनद और काफी रिस्पेक्टेड आलिम वो खड़े हो गए जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था, तो उसमें वो खड़े हुए और उठ करके उन्होंने चंद बातें करी हमारे मुल्क के बड़े साहब से, और वो बातें जो उन्होंने करी ना वो इंतहाई लॉजिक वाली बातें थी, तो उन्होंने नेल कर दिया इन साहब को कि जी आपने ये बात कैसे करी, आपने ये बात कैसे करी, आपने जो बात करी इसका तो ये मतलब निकलता है। तो उन साहब के पास कोई जवाब तो था नहीं इनकी इन एतराजात का, इन आलिम साहब के एतराजात का कोई जवाब नहीं था उनके पास, लेकिन उन साहब ने ना एक जुमले में नफी कर दी कि आप जो कह रहे हैं ना, नहीं नहीं मैं इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी आप यहां पे सियासत खेलने के लिए आए हैं, इन्होंने कहा नहीं मैं कोई सियासत खेलने के लिए नहीं आया हूं, बस खत्म होगी बात, आगे बढ़ गए। तो उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने कोई दलील से जवाब नहीं दिया उन मौलाना साहब की बात का, कोई इनके पास दलील नहीं थी, कोई इन्होंने क्लियर नहीं किया बात को, लेकिन इन्होंने ऐसे वसूख के साथ जवाब दिया कि मैं ये नहीं कर रहा, बस। और जो इनके चाहने वाले लोग थे ना, उन्होंने इसकी वीडियो की क्लिप बनाई और सारी दुनिया में वायरल करनी शुरू कर दी। ये देखो 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 देखो, जाहिल मौलवी ने जो है वो ये करने की कोशिश करी और उसने तो बड़ी अच्छी बात करी, हालांकि उसने कोई जवाब भी नहीं दिया, कोई उसके पास दलील भी नहीं है, ऐसी बस मैं नहीं कर रहा ये काम, बस। और एवरीवन बॉट इट, भाई क्यों आपने दलील क्यों नहीं मांगी, आपने अगले बंदे की लॉजिक को नहीं देखा, वो ज्यादा बड़ी लॉजिक की बात कर रहे थे, वो इस तरह की बात कर रहे थे, जरा गौर करते तो उनकी बात आपके सामने क्लियर हो जाती। नहीं, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतनी अकल भी नहीं होती, हम बहुत आसानी से बाय कर लेते हैं किसी की एक स्टेटमेंट को, वाई जस्ट बिकॉज हमारा उसके साथ एक एतमाद का रिश्ता है, हम उसके लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं। क्यों एतमाद का रिश्ता होता है, क्योंकि वो जिस लाइफस्टाइल को प्रेजेंट कर रहा होता है या रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, हमें वो वाला लाइफस्टाइल ज्यादा पसंद आ रहा होता है, और जो मौलाना साहब वाला लाइफस्टाइल है, इतनी से बड़ी दाढ़ी है, ऊपर उन्होंने पगड़ी बांधी हुई है और जो है वो जो भी कर रहे हैं, वो हमें लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगता, हम वैसा ना खुद बनना चाहते हैं ना हम अपने औलाद को वैसा बनना देना चाहते हैं। जबकि ये साहब जो है डिनाई करने वाले साहब, इनका हमें पता है कि इनकी जिंदगी में कोई दीन नहीं है, बहुत इन्होंने दीन की और दीन वालों की बहुत ज्यादा जुल्म और बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, दीन को सिरे से बदलने की भी कोशिश करी, और बहुत ही ज्यादा यानी फिस्क फजूर वाली जो जिंदगी कहलाती है ना, ये उस जिंदगी को के नुमाइंदे हैं ये, लेकिन वी स्टिल टेक व्हाटएवर ही सेज एज इफ वो बिल्कुल सच बोल रहा है। तो देखिए ये इंसान की ना ये नेचर है एक्चुअली इंसान की, ये अवामुन्नास की नेचर होती है, ये उलमा की नेचर ऐसी नहीं होती कि जो कि डेप्थ में जाते हैं, जो कि चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उनकी ऐसी नेचर नहीं होती, वो उनके इल्म की वजह से, उनके तक्वे की वजह से ऐसा होता है कि वो हर चीज को इतनी इजीली बाय नहीं कर लेते। लेकिन अवामुन्नास का ये मामला नहीं होता, अवामुन्नास के सामने आपने एक स्टेटमेंट देनी होती है, वो स्टेटमेंट जो होती है ना उन्होंने बाय कर लेनी होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप विद देम, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है ना दे विल बाय व्हाटएवर यू वांट टू से, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है दे विल नॉट बाय व्हाटएवर यू वांट टू से, व्हाटएवर यू आर सेइंग नो मैटर हाउ लॉजिकल इट इज, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। ये असल में उसूल की बात है जिसको कि हम यहां से लेकर के जाएं, ठीक है, क्यों, इसलिए कि सारा मामला जो है ना वो इस रिलेशनशिप का ही है, इस निस्बत का ही मामला है, इसको निस्बत कहते हैं मशाइख की जुबान के अंदर, ठीक है। अगर हमारी निस्बत होगी ना नेक लोगों के साथ, तब हम उनकी बातों को बाय करेंगे, हम उनकी बातों पे एतमाद करेंगे, यकीन करेंगे, और अगर हमारी उनके साथ रिलेशनशिप नहीं है, हम उनको अंदर बाहर से नहीं जानते, हम उनके पर्सनल अफेयर्स को नहीं जानते कि हम उनके ऊपर एतमाद कर सकें, अगर ये रिलेशनशिप नहीं है ना, तो फिर कल को अगर कोई आग भी आने वाली होगी ना आसमान से, और हमारे उलमा कहेंगे कि इस आग से बचो ये तुम्हें खत्म कर देगी, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। देखिए दज्जाल जो है ना, दज्जाल का फितना जो है वो हम क्या कहते हैं आमतौर पर, कहते हैं जी ये बड़ा मादी फितना है ना, ये बड़ा मादी है, बड़ा मटीरियलिस्ट होगा और ये इसके पास दुनिया की दौलतें होंगी, फलाना होगा, धमकाना होगा, ठीक है, और ये खुदा से लोगों को काटेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मादी फितना नहीं है, फकत मादी फितना नहीं, एक्चुअली मादी फितना तो की तो ये शक्ल में आएगा, लेकिन एक्चुअली ये कौन सा फितना है, ये एक्चुअली तो ईमानी फितना है। ये दज्जाल आकर के ये नहीं कहेगा कि कोई खुदा नहीं है, क्या ये कहेगा ये कि कोई खुदा नहीं है? नो, ये एथियस्ट नहीं होगा, ये कहेगा मैं खुदा हूं, मेरे पास गैबी ताकतें हैं जिनको कि तुम परसीव नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला ने इसके साथ लगाए भी होंगे फरिश्ते, ये बात कहेगा फरिश्ते की आवाज आएगी, यानी पूरा सिस्टम बना हुआ होगा, तो ये एक गैबी ताकत की शक्ल में आएगा, ठीक है, यानी एक गायबाना सिलसिला होगा, ये एक रूहानी सिलसिला होगा, उस तरह का रूहानी सिलसिला, नेगेटिव रूहानी सिलसिला कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि जी पूरे के पूरे डिवाइन से काट देगा और उसके बाद जो है वो यानी दुनिया के अंदर बस लोगों को उलझा देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मटेरियल शक्ल में आएगा क्यों, आने की वजह क्या है इसकी, कि ये दुनियावी इसके पास नियमतें होंगी, दुनियावी ताकतें होंगी इसके पास, और जन्नात भी होंगे, और जन्नात भी होंगे इसके पास, बाग भी होंगे, और बारिश बरसाने की कैपेबिलिटी होगी, और ये सब कुछ भी होगा, तो ये क्यों होगा? इसकी वजह ये है कि इन चीजों के जरिए से जो है ना, ये एक्चुअली क्या करेगा, ये इंसानों का एतमाद लेगा, एतमाद हासिल करेगा, ठीक है, और इस एतमाद हासिल करने के बाद ही अपने आप को प्रेजेंट करेगा कि मैं खुदा हूं। तो ये लोग जो है ना, जो इसको इसके ऊपर एतमाद करना शुरू हो जाएंगे ना, अब ये इसकी जुबान से हर बात को तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे, हर बात को तस्लीम करने के लिए। तो इस वजह से एक्चुअली हाउ द प्रोसेस वर्क्स इज दैट कि लोगों का पहले से कहीं पे एतमाद का ताल्लुक होता है, पहले से एक ताल्लुक होता है, हर इंसान जो है वो एतमाद करने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि इंसाफ की बात पे एतमाद कर लिया, आप किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाएं, वो आगे से कहते नहीं मैं ऐसा नहीं करता, तो उसकी बात के ऊपर अच्छा खासा एतमाद हो जाता है, आपका जो है ना वो एक जो एक 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 इंटेंसिटी होती है ना, आपको किसी के खिलाफ जुबान से अगर वो उसको डिनाई कर देना, इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हर इंसान का किसी न किसी जगह पर एतमाद का रिश्ता होता है। जब आपको अपने ऊपर एतमाद करवाना हो किसी के, आप चाहते हो कि लोग अब मेरे ऊपर एतमाद करना शुरू हो जाए, ठीक है, ये बात पहले भी कई दफा हो चुकी है और बड़ी कॉमन सेंस की बात है। जब आप चाहते हैं कि लोग मेरे ऊपर एतमाद करना शुरू हो, आप अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, अपना निजाम बनाना चाहते हैं, लाजमी है कि पहले आप उस एतमाद को तोड़ें जो उनका ऑलरेडी किसी के साथ बना हुआ है, पहले आप उस एतमाद को तोड़ें, उस सिलसिले को खत्म करेंगे। जब वो सिलसिला खत्म होगा ना, फिर ये लोग जो होंगे ये क्या होंगे, अंग्रेजी में कहते हैं ना अप फॉर ग्रैब्स, बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है ना। अब इनका कोई पेशवा नहीं होगा, अब इनका कोई इमाम नहीं होगा, अब इनका कोई मुक्तदा नहीं होगा, क्योंकि आप जो है वो उनके जो पहले मुक्तदा थे उनकी बुराई कर करके झूठी हो या सच्ची हो, ठीक है ना, झूठी हो या सच्ची हो, जैसी भी बुराई कर करके आप उनको काट चुके हैं उनके मुक्तदाओं से, अब ये इजिली अवेलेबल हैं। अब आप इनको अपने पास से किसी तरीके से इंप्रेस करके, चाहे सच्चाई वाली इंप्रेशन हो चाहे झूठा झूठ वाली तरीका हो, अब इनको आप अपने आप से जोड़ सकते हैं, बहुत आसान होता है ये, ठीक है ना। अंबिया भी यही काम करते हैं दुनिया में आकर के, और अंबिया की जो ऑपोजिट फोर्स होती है शयातीन वाली फोर्स, वो भी यही काम करती है, बिल्कुल एक ही काम करती है दोनों। अंबिया किससे काट रहे होते हैं, बातिल से काट रहे होते हैं, सच बोल करके बातिल की बुराई करके लोगों को पहले बातिल से काटते हैं, जब वो बातिल से कट जाते हैं ना, फिर उनको अपने आप से जोड़ते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रहे होते हैं। जब तक वो वहां से कटेंगे नहीं, अंबिया से नहीं जोड़ सकते,
बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरी साइड ऑफ फोर्स है वो भी यही करती है। पहले अंबिया के सिलसिले के साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनके सामने अंबिया की बुराई करती है, अंबिया के जो वरसा होते हैं उलमा मशाइख उनकी बुराई करती है, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, इन्होंने अपना दीन बनाया हुआ है, इन्होंने अपनी दुकान चलाई हुई है और इन्होंने बिला दलील बिला सनद जो है वो चीजें लोगों को बताई हुई हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है, इनको ना कुरान का कुछ पता है, इनको ना हदीस का कुछ पता है, ये तो बस अपनी बातें करने वाले लोग हैं। इस तरह की बातें कर करके अवामुन्नास को उनसे काटते हैं। जब वो कट जाते हैं तो अब वो बहुत ईजी टारगेट होते हैं। अब उसके बाद अपने फजाइल बयान कर करके कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मेरे पास तो ये दलील है, मेरे पास तो वो दलील, उनको तो अवामुन्नास को तो ना उधर का कुछ पता होता है ना इधर का कुछ पता होता है, वो तो एक एतमाद का रिश्ता था जो कि आपने तोड़वा दिया। अब वो अपनी अपनी तारीफें कर करके उनको अपने से जोड़ना शुरू कर देते हैं, अपने से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो दज्जाल भी जो है ना वो एग्जैक्टली यही करेगा कि पहले मादी चकाचौंध के जरिए से वो इंसानों को रूहानियत से काट देगा। जब वो रूहानियत से और काट चुका है, बल्कि वो जब वो रूहानियत से कट चुके होंगे ना, प्लेन मादियत के अंदर जब वो आ जाएंगे, फिर वो अपनी रूहानियत लेकर के आएगा, अपनी खुदाई ताकतें जो उसको अल्लाह ताला ने कुछ थोड़ी सी दी हुई होंगी फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो वो चीजें दिखाएगा लोगों को ताकि लोग जो है वो उसकी हर बात के ऊपर एतमाद करना शुरू कर दें। तो ये वही लोग जो दज्जाल के ऊपर एतमाद करेंगे कि जो कि मार्केट में अवेलेबल लोग होंगे, जिनका कि कहीं पे कोई एतमाद वाला रिश्ता नहीं होगा। आपके सामने ये बातें दो रीजन से बयान की जा रही हैं। एक रीजन ये कि ये जो हम भाई रिपीटेशन हो रही है, ठीक है माफ कर दीजिएगा, ये जो हम YouTube के जरिए से अपना दीन ले रहे हैं ना, इस दीन के अंदर आपका कोई एतमाद वाला रिश्ता नहीं बन सकता, क्योंकि वो कितने ही अच्छी बातें कर रहे हो, कितने ही प्योर मौलाना साहब हो, कितने ही ऐसे मौलाना साहब हो या जो भी हो, कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, आपका उनके साथ कभी भी एक जाती ताल्लुक नहीं बन रहा, कोई आपका इंटरेक्शन उनके साथ है नहीं, आप उनके घर के हालात नहीं देख सकते, आप उनके मामलात नहीं देख सकते, आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते, वो आपको कुछ बता नहीं सकते, वो आपको रोक टोक नहीं कर सकते, वो आपको एंकरेज नहीं कर सकते, कोई ताल्लुक ही नहीं है आपका उनके साथ। तो आपको इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, नॉलेज तो मिल रही है, एतमाद का रिश्ता कायम नहीं और आपका उनके साथ। तो जिस वक्त आपके ऊपर आजमाइश पड़ेगी ना, वो कितने बड़े तीर साहब क्यों ना हो, जिस वक्त आपके ऊपर अल्लाह ताला ईमान वाली आजमाइश डालेंगे ना, उस वक्त वो आपकी मदद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका उनके साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, आप उनसे जाकर के मदद ले ही नहीं सकते, बातों को क्लियर कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से ना ये चीज जो है ना, इसके ऊपर रिलाय करके अपनी सारी जिंदगी गुजारने की कोशिश करना कि मैं इधर से ये सुन लूंगा, फिर उधर से उनको भी सुन लूंगा, फिर इनको भी सुन लूंगा, फिर इनको भी सुन लूंगा, इस तरीके से आपका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा है, आप पक्के नहीं हो रहे, आपकी निस्बत गहरी नहीं हो रही है, आप हमेशा जो है वो कच्चे ही रहेंगे, और ये कच्चापन फिर एक ना एक दिन जाकर के आपको ले डूबेगा। जब बड़े बड़े फितने आ रहे हैं और भी आएंगे बड़े वाले, फिर आप उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस वजह से एक रिलेशनशिप बनाए, पक्की रिलेशनशिप बनानी चाहिए, एतमाद वाला रिश्ता बनना चाहिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से ना हर एक बातों में ना आना शुरू हो जाए जब कितने आएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है, और आखिरी बात जिसको करके आज खत्म करेगा, दान हो चुकी है, कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा एहतियात करें, बहुत ज्यादा। हम लोगों ने जो बच्चों के लिए अपने ख्वाब सुहाने देखे हुए होते हैं ना, कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा सोशल किस्म का एनिमल होना चाहिए, एनिमल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते लेकिन सोशल एनिमल ही एक्चुअली डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत ही एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हर किसी के साथ उसकी दोस्ती होना चाहिए, ही शुड बी वेरी, यानी बहुत ही सोशल किस्म का, कम्युनिटी के अंदर बहुत, तो हर एक के साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए, उसकी दोस्तियां होनी चाहिए, उसको यानी बड़ी एक्सेप्टेबल किस्म की उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो ये जो हमारी ख्वाहिशात होती है ना अपने बच्चों के बारे में, तो इस वजह से ना हम चाहते हैं कि वो हर तरह के लोगों के साथ घुलें और मिलें, वो उनके घर भी पार्टी में भी अटेंड करें, उनको इनवाइट किया जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक तमगा होता है कि मेरे बच्चे को तो बर्थडे पार्टीज के अंदर इन्वाइट किया जाता है, मेरे बच्चे को तो हर कोई जो है ना वो अपनी पार्टी के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए बुलाता है, दे वॉन्ट माई किड टू बी पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, बड़ा खुश होते हैं हम लोग इन बातों से, और फिर हम अपने बच्चों को भेजते भी हैं इस तरह की ट्रिप्स के ऊपर भी भेजते हैं ताकि वो दूसरों के साथ घुलें मिलें और उनको जो है दुनिया में रहने का सलीका, ये बहुत सारी बातें हमने बनाई हुई हैं, سن سن کر کے مختلف سورسز سے نا یہ ٹرمز ہم نے بائی کری ہوئی ہیں, کیچ کری ہوئی ہیں, ان کو ہم اپلائی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. ٹھیک ہے, تو یہ جو خواہشات ہیں نا ہماری, یہ خواہشات جو ہے نا پھر ان کے ساتھ پھر دین نہیں چلتا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کو چاہ رہے ہیں نا کہ وہ جائیں, وہ جب ان کے ساتھ جائیں گے نا, ان کی پارٹیز میں شامل ہوں گے نا, اور ان کے ٹرپس کے اندر وقت گزاریں گے نا ان کے ساتھ, تو نیچرل کانسیکوینس کا یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی, محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی, ان کا ان کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا, ایک اعتماد کا رشتہ بن جائے گا. پھر وہ جو رشتہ ہوگا نا, اب آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد. اب انہوں نے اپنی انفارمیشن, اپنی آئیڈیالوجی, اپنی تھنکنگ وہ ان سے لینی ہے, آپ سے نہیں لینی اب. یا جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, مولانا صاحب سمجھتے ہیں یا شیخ صاحب سمجھتے ہیں, ان سے انہوں نے نہیں لینی ہے ساری چیزیں. اب انہوں نے ان سے لینی ہے جن کے ساتھ ان کا یہ محبت کا تعلق بن چکا ہے. ناؤ یو کین ڈو اینی تھنگ. تو وہ جو ہماری خواہشات ہیں نا, پھر وہ اس طریقے سے پھر آتی ہیں بعد میں پلٹ کر کے ہمارے اوپر, اور پھر ہم روتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ بگڑ گیا, اور یہ ایسا اچھا خاصا تو تھا, اور میں نے تو اس کو نماز بھی پڑھنا سکھائی تھی, اور میں نے تو اس کو فلانا بھی سکھایا تھا, اب پتہ نہیں وہ تھوڑا سا دہریا سا ہو گیا. تھوڑا سا دہریا ہو گیا, کافر نہیں ہو گیا, تھوڑا سا دہریا ہو گیا, تھوڑا سا ملد ہو گیا. بھائی آپ نے خود بویا ہے اس کو, اپنی خواہشات کی وجہ سے بویا ہے ان چیزوں کو, اور اب جو ہے نا آپ کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. تو اگر اس قسم کی ہماری خواہشات ہیں نا, تو ہمیں ان خواہشات کو کرب کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ اٹ گیٹس ٹو لیٹ. بچوں سے زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ وہاں پہ جائیں گے, اور میں نے تو ان کو اتنا اچھا ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈسکرن کر سکیں گے, کیا سچ ہے کیا باطل ہے, وہ سچ کو لیں گے اور باطل کو چھوڑ دیں گے, اور ایمان کو لیں گے اور کفر کو چھوڑ دیں گے. یہ بچوں کے پاس صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں, وہ اتنے بڑے نہیں ہوئے ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنا علم اور اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے. یہ کام ہمارے کرنے کا ہے. تو اس کے ساتھ آج کی بات ہم ختم کریں گے. تو جو اصل باتیں تھیں جس کی وجہ سے کہ یہ سارا قصہ شروع کیا تھا کرونا وائرس سے لے کر کے, وجہ یہ تھی کہ اعتماد کا رشتہ جہاں پہ ہم نے بنایا ہوا ہوگا نا, ہم وہیں پہ رہیں گے, اور جس کے ساتھ اعتماد کا رشتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے. اب یہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اعتماد کا رشتہ کہاں بنانا چاہتے ہیں. یہ ہماری چوائس ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو وی ہیو ٹو ڈیسائڈ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو ود آور سیلفز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہماری ترتیب ہے کہ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو جائے, اپنے گناہوں سے ہم استغفار کر لیں. تو ابھی ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے. سب اپنے دل کے اندر تمام غلطیوں کو تاہیوں سے توبہ کی نیت کر لیں, ایک ارادہ کر لیں کہ میں اپنے ایمان کی ابھی تجدید کرتی ہوں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہوں. اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم نے اپنے ایمان کی تجدید کری ہے, کیونکہ کلمہ شہادت بھی اس میں ہے, کلمہ طیبہ بھی ہے, ایمان مفصل بھی ہم نے دہرایا اور ایمان مجمل بھی. اور استغفار بھی کیا اللہ تعالیٰ سے، اس کی رحمت بھی طلب کی ہے. تو اس کے بعد پھر جو معاملات بتائے جاتے ہیں، جو ہمارے سلسلے کے مشاہد ہیں جو معاملات بتاتے ہیں، مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو یعنی توبہ کر لینے کے بعد اس توبہ پر استقامت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اس استقامت کے لیے انسان کچھ روٹین میں اگر ایک لگ جائے اور کسی کے ساتھ ایک تعلق بنا لے جس میں مشورہ بھی اس پہ چلتا رہے، اس کے بتائے ہوئے کچھ اعمال کے اوپر وہ عمل بھی کرتا رہے، تو یہ ایک بہانہ بن جاتا ہے توبہ پہ استقامت کا. تو اسی نیت کے ساتھ یہ معاملات بتائے جاتے ہیں. تو یہ معاملات ہمارے سلسلے کے جو مشائق ہیں وہ 6 بتاتے ہیں، تو وہ بھی سن لیجئے. پہلا معمول ہے استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. جو پہلے سے پڑھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں. اور یہ 100 دفعہ جو ہے یہ لوور لمٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک ابتدائی طالب علم کو یا سالک کو تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے درود شریف پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ بھی کوئی لوور لمٹ یعنی اپر لمٹ نہیں ہے کہ 100 ہی پڑھ سکتے ہیں، 100 زیادہ نہیں پڑھ سکتے. ایک امتی کو تو ہر وقت درود شریف پڑھنا چاہیے. تو درود شریف پڑھنا یہ دوسرا معمول ہو گیا. تیسرا معمول ہے قرآن شریف کی روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھ سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے تو آدھا ہی پڑھ لیں. چوتھا معمول ہے کہ ہر وقت اللہ تعالی کی طرف دھیان رکھیں، ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. اس کو اپنے دل کو اللہ کی یاد پر ٹھہرانا بھی کہتے ہیں، وقوف قلبی عربی میں کہیں گے اس کو. تو یہ وقوف قلبی یہ چوتھا معمول ہو گیا. پانچواں معمول مراقبہ کرنا ہے. اس کا مطلب خالی اتنا ہے کہ دنیا سے ہٹ کٹ کر کے وہ تبتل الیہ تبدیلا، جو قرآن میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہٹ کٹ کر کے اللہ تعالی کا ذکر کرو، تو اس تبتل کے ساتھ ذکر کرنا مطلب یہ کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لیں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں اور تصور کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. یہ مشائخ کے ہاں کی ایک ترتیب ہے، یہ ترتیب جو ہے یا یہ صورت یہ کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسپیرینشل چیز کہلائے گی، تجرباتی چیز کہلائے گی. تو اس کو سنت کی نیت سے نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ایک علاج کے نیت سے کرنا ہے. تو مراقبہ کر لینا یہ پانچواں معمول ہو گیا. اور چھٹا معمول ہو گیا رابطہ شیخ، یعنی جس کو بھی آپ نے اپنے لیے اصلاحی رابطے کے لیے تعلق کے لیے پسند کیا ہے، تو اس کے ساتھ اپنے معاملات کے اندر مشورے کے ساتھ چلنا. تو یہ کل 6 معاملات ہو گئے، استغفار، درود شریف، قرآن شریف، وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ شیخ. دعا کر لیجیے. سبحان جلال الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا،
اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ایمان حاصل ہونے کے بعد کفر سے حفاظت فرما، اللہ عقائد کے فساد سے حفاظت فرما، اللہ بد اعتمادی سے حفاظت فرما، اللہ بد اعتقادی سے حفاظت فرما، اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، اللہ فتنہ مال سے حفاظت فرما، فتنہ جمال سے حفاظت فرما، اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما، اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اللہ ظاہری باطنی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اللہ قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما، اللہ قلت سے علت سے حفاظت فرما، اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، اللہ روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما، اللہ جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، اللہ ناگہانی آفتوں میں مبتلا ہو جانے سے حفاظت فرما، اللہ جو بھی بیماریاں آج کل مشہور ہیں یا مشہور نہیں ہیں، اللہ تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تمام اہل و عیال کی حفاظت فرما، اللہ دوست احباب کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں کلمے پر موت نصیب فرما، اللہ ایمان والی تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما، اللہ استقامت نصیب فرما، اللہ دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، اللہ ہر قسم کے فتنوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرما، اللہ ہمارا تعلق اپنے مشائخ کے ساتھ مضبوط سے عزبت فرما، اللہ ہماری نسبت کو مضبوط بنا، اللہ ہوا کے تھپیڑوں سے اس کی حفاظت فرما، اللہ گمراہ کرنے والوں کی گمراہی سے اس کی حفاظت فرما، اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اجر عطا فرما، اللہ انہوں نے ہمیں تیرا در دکھایا بات سمجھائی، اللہ ہمارے لیے دعائیں کریں، اللہ ہمارے لیے فکریں کریں، اللہ اس کے بدلے میں ان کو بہترین جزا عطا فرما، اللہ ہمارے والدین کو بہترین جزا عطا فرما، اللہ اساتذہ کرام جو محنتیں کر کے ہمیں پڑھا رہے ہیں، اللہ قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اللہ فقہ پڑھا رہے ہیں، دیگر مضامین پڑھا رہے ہیں، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، اللہ اس کے بدلے میں ان کو بہترین اجر عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے تمام بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اپنے اولادوں کی آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر نصیب فرما، اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ایمان کے اوپر گزند کے لیے جو بھی اعمال ہیں اللہ تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری پرائیورٹیز کو صحیح فرما، اللہ جو بھی ہماری فکر کی غلطیاں ہیں، سوچ کی غلطیاں ہیں، اللہ ہمارے سمجھنے کی غلطیاں ہیں، یا اللہ ہماری جو ترجیحات میں غلطیاں ہیں، اللہ تمام غلطیوں کو درست فرما، اللہ عافیت کے ساتھ ان کی اصلاح فرما، اللہ آزمائشوں اور پریشانیوں کے راستے سے اصلاح نہ فرما، اللہ وقت کے ضائع ہو جانے سے حفاظت فرما، اللہ وقت ضائع کر دینے سے حفاظت فرما، اللہ ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے شر سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے بیوی بچوں کی، اللہ خواتین کے شوہروں کی، اللہ سب کی حفاظت ہمارے شر سے فرما، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت ہمارے شر سے فرما، اللہ ہمارے پاس پڑوس کو اور ساتھ کام کرنے والوں کی ہماری شر سے حفاظت فرما، اللہ ہماری بھی تمام مخلوق کے شر سے حفاظت فرما، اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اللہ مہربانی والا معاملہ فرما، اللہ تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اللہ علم کے بھی کمزور ہیں، اللہ ذکر سے تو بالکل ہی فارغ ہیں، اللہ ہر چیز ہی ہمارے اندر کم ہے، خراب ہے، کوتا ہے، اے اللہ اس دور میں ہم فتنہ دجال سے مقابلہ کیسے کر پائیں گے، اے اللہ ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ اپنی مہ کو مٹانے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہوتی ہے، اے اللہ اس رکاوٹ کو گرانے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ اپنے دل کا تصفیہ کرنے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ جتنے گناہ کر چکے، اے اللہ ان کی نحوستوں کو ہماری زندگیوں سے دور فرما، اے اللہ ان کی بے برکتیوں کو ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھرانوں سے دور فرما، اے اللہ ہمارے رزق کی بے برکتی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رزق کی برکت نصیب فرما، اے اللہ کاموں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ فیصلوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ وقت میں برکت نصیب فرما، اے اللہ حفاظت والا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور فرما, اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے دور فرما, اے اللہ توبہ کے اوپر استقامت نصیب فرما, اے اللہ توبہ طائب ہو کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ جو ہمارے معاملات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں, اے اللہ جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں ان نصیحتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ ہماری مدد فرما, اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.